भाई आप तो आगे आ जाओ, ये कोच भर लो, हेम सिंह दोनों आ जाओ वीआईपी कोच पे। देखो माताएं आ गई ना फटाफट। हम सभी के पास बहुत सुंदर समय है संगम युग का। एक प्रश्न है और उसके उत्तर पर ही हम चर्चा करेंगे। संगम युग पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बहुत अनमोल समय है। सभी ब्राह्मण इस समय को बहुत याद किया करेंगे। आगे आने वाले समय में ये समय विशेष यादगार बन जाएगा। मैं आज याद कर रहा था बाबा की एक बात, मुरलियों में आती ही रहती है, तीन चार दिन पहले भी आई है, संगम युग का एक एक सेकंड बहुत बड़ी चीज है ना। कहने वाला भी स्वयं भगवान है। ये नहीं कि किसी ने हमें ऐसे ही मन को खुश करने के लिए कह दिया हो, जो हमारे लिए परम कल्याणकारी है उसने हमें कहा है तुम्हारा ये समय बहुत ही अनमोल है, क्या करना चाहिए। क्या बात, माताओं को इधर बैठने में क्या तकलीफ है, कुछ गड़बड़ है बीच में। क्या करना चाहिए हमें, बस क्या करना चाहिए, समय को संपूर्ण रूप से सफल करना है। बाबा की याद तो सफल करने का साधन है ही। अच्छे चिंतन में, सेवाओं में, बाबा की याद में हमें अपने समय को सफल करना है। जो समय को सफल करते हैं उनका ही जीवन भी सफल होता है, ठीक है। जो समय को नष्ट कर देते हैं, एक समय आता है जब उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, मेरे पास कुमारों के फोन आते हैं, बहुत ऐसे कुमार जिन्होंने अपना समय अच्छा नहीं गुजारा, फिर ज्ञान में आ गए, ये तो उनका भाग्य। लेकिन बचपन से ही कुसंग में आकर अपना जीवन अच्छा नहीं चलाया तो इतने पछताते हैं कि काश कोई हमें सद्बुद्धि दे देता। हमारे माँ बाप भी हमें समझाते थे कि उस बुरे संग में न जाओ, लेकिन हमें तो क्रेज था ना, समझते हैं क्रेज, एक पागलपन आ जाता है, वहीं जाना है। तो अब न योग लगता न खुशी रहती, ज्ञान है लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी आत्मा को आत्मसंतोष नहीं मिलता। कल ही मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, हमारे यहाँ उनका नाम लिखाई हुआ था बहुत समय से, वो आर्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ आते रहते हैं, दादी के लिए वो आते रहते थे, ज्ञान में भी हैं थोड़े थोड़े, बता रहे थे मेरा लड़का 11वीं क्लास में ही ऐसे संग में था, एक बहुत सुंदर स्कूल में उसको दाखला दिलाया था अहमदाबाद में, जहाँ दाखला मिलता नहीं है। आजकल इंटरनेट पे बहुत बुरी बुरी चीजें भी आती हैं, साथियों के संग में पड़ गया, मुझे पता चल गया, मैंने स्कूल छुड़वा दिया, दूसरे स्कूल में गया। अब वो रोज कहा मुझे लड़ता है, पापा आपने मेरा जीवन खराब कर दिया, मैं अपने साथियों के साथ तीन चार साल और एंजॉय करता, वो इसको आनंद समझते हैं, और ये उनको समझाता है कि बिगाड़ नहीं दिया, बिगड़ने से बचा दिया है बेटा, समझ जाओ। लेकिन आज के युवक उस बात को नहीं समझते, फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब फिर पछताते हैं, अब माँ बाप को गाली देते हैं फिर पछताते हैं। हमारा भी समय बहुत सुंदर चल रहा है, आने वाला समय कैसा खतरनाक होगा ये हम में से कोई भी समझ नहीं सकता। हम यदि वहां जाएं आज जहां बाढ़ का प्रकोप है, हम यदि उन मनुष्यों की कल्पना करें, आज मैंने जरा सी टीवी देखी, दिल्ली का दिखा रहे थे, यूपी के बहुत शहरों का दिखा रहे थे, दो दो तीन तीन मिनट, घरों के दरवाजों के ऊपर तक पानी भर गया है, 8-8 फुट, लोग छतों पे रह रहे हैं, टेंट से लगाए हुए ये प्लास्टिक के, बरसात हो रही है। अब सोचो खाएं कैसे, कहा हमारे बच्चे पानी में गिर गए कई बार, छोटे बच्चे, उनका चित्र आ रहा था, बरसात हो रही है, कैसे वो आग जलाएंगे, ऊपर लाइट नहीं है, लाइट तो वैसे ही बंद हो जाती है, बंद कर दी जाती है, नहीं तो पानी में करंट तो तेजी से फैल जाता है, सब मर जाएंगे। हम कल्पना करें यदि हम उस स्थिति में हों, भयानक विनाश है ना, मृत्यु हो जाना तो बहुत अच्छा है ऐसे में, लेकिन जी रहे हैं और निरंतर परेशानियों में जी रहे हैं, एक आध दिन नहीं, पता नहीं कितने दिन लग जाए, बीमारियां फैल जाती हैं। तो ऐसे समय में मनुष्य को अपने पाप और पुण्य को दर्पण में देखने का मौका मिलता है। अभी मुझे वो भाई बता रहे थे, बैठे हैं, कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो रसिया में आग लगी, जो ये बाढ़ आई हुई है, अमेरिका में भी आई हुई, चाइना, जर्मन, पता नहीं कहां कहां चल रही है, पाकिस्तान का तो बुरा ही हाल कर दिया, भारत तो एक बड़ा देश है फिर भी संभल जाता है बहुत जल्दी, यहाँ का तंत्र भी बहुत सुंदर है, मदद होती है, लोग मदद करते हैं, पाकिस्तान तो जैसे आधा नष्टी हो गया। तो वैज्ञानिक बता रहे हैं ये क्यों हो रहा है, तो जैसे सागर में सुनामी आती है, वैसे सूरज में सुनामी, पानी की नहीं, गर्मी की, अग्नि की। तो उससे मैं तो बहुत पहले से इस बात का अंदाजा लगाता आया हूं, पर वैज्ञानिक कहते आ रहे हैं कि संसार से, क्योंकि जो ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जो जहां है वहीं रह जाएगा, तो आप देखो संसार से दो चीजें लोप हो जाएंगी, 5000 साल के लिए लोप हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स जो सारा चल रहा है। आप सोचो संसार में अरबों लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पे, उनको नौकरियां मिली हुई हैं, सबकी नौकरियां एक साथ समाप्त हो जाएंगी, संसार में स्थूल रूप में भी अंधकार व्याप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि अब से 100 साल पहले न बिजली थी और 50 साल पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं था। जो लोग उन पे आधारित हो गए हैं वो तो अति परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो लोग अपने जीवन को सहज भाव से जी रहे हैं वो फिर घरों में लालटेन जलाएंगे, दीपक जलेंगे, सब काम हाथ से करने लगेंगे, उनका जीवन तो सुखी रहेगा। बाकी हम जरा कल्पना करें जब बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चले जाएंगे, संसार की क्या स्थिति होगी। सोचो केवल रहने की बात नहीं, करोड़ों अरबों लोगों की नौकरियां गई, भारत के बड़े बड़े शहरों में जो आईटी केंद्र खुल गए हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इधर भी बहुत हैं अहमदाबाद की तरफ, वो सब बेकार। ऐसे समय में हम सभी को केवल काम आएंगे क्या, अपनी कमाई जो हमने जमा कर ली है। इसलिए संगम युग का बहुत ज्यादा महत्व है। अब आप कल्पना करो नॉर्थ इंडिया में खेती पानी में डूबी हुई है लंबे काल से, महंगाई बढ़ जाएगी बहुत, बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसका भी बहुत बुरा असर आएगा। तो एक ओर विकास भी दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर विनाश भी चल रहा है। इसलिए हम सभी को बहुत ध्यान देना है कि हम समय को सफल करें, तो समय हमें सफलता दिलाएगा, ये खजाने हमें सफलता दिलाएंगे, बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हम एक जरा सी बात पे गौर करें, सबके मोबाइल फोन ठप। जब इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा, सैटेलाइट ही काम नहीं करेंगे, ये जो टावर जहां तहां लगाए ये बेकार हो जाएंगे, तो मोबाइल डब्बा रह जाएगा ना, खिलौना। तो जिनको मोबाइल पे जीने की आदत पड़ गई है, उनको बहुत कष्ट होने लगेगा। उनको लगेगा यार बहुत अच्छी चीज चली गई हमसे, जो 10 साल पहले नहीं थी, जो 5 साल के बाद शायद फिर न रहे, वो भी मनुष्य को परेशान कर देगी। हम संभलें, समय के महत्व को समझते हुए पुण्य का खाता बढ़ाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अपनी प्योरिटी की शक्ति को बढ़ाएं, इस खजाने को बढ़ाएं, अपनी योग की शक्ति को बढ़ाएं। छोटी बातों में, अलबेलेपन में हमारा समय न बीत रहा हो। हम ध्यान देंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, संगम युग पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, बोलो, सदा के लिए, जिससे विदाई ले लें। जैसे हमने विदाई दे दी है ना कुछ चीजों को, खान पान ये वो विदाई दे दी ना, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू विदाई दे दी, कुछ चीजों को और विदाई दे देनी है। ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। क्रोध, परचिंतन, दूसरों को कमजोरी देखना, नेगेटिव थॉट्स, सबके अलग अलग भी होंगे, व्यर्थ, और बोलो साधारणता, और बोलो थोड़ा गहराई में चले। मैंपन को पूरी तरह त्यागना अपना लक्ष्य बना लें। देखिए कुछ ये चीज हमारी मोटी धारणाएं हैं, भाई हमें व्यर्थ में नहीं रहना, परचिंतन नहीं करना, क्रोध को छोड़ना, ये भी उत्तम बातें हैं, छोटी नहीं है। पर जरा सूक्ष्मता, जिससे हमारे जीवन में दिव्यता आएगी, मैंपन को छोड़ना अपना लक्ष्य बनाए। कोई भी अच्छा काम भी, सेवा का काम भी, यदि मैंपन से किया जाता है तो वो आत्मा को बल नहीं देता। हम एक चीज और बहुत अच्छी अपनाएं अपने जीवन में, इस पे हम ध्यान देंगे, अपनाएंगे बाबा। क्या बाबा? केवल बाबा को याद करने की बात नहीं, संगम युग पर ये यज्ञ किसने रचा है? बाबा ने। इस यज्ञ का फाइनली जिम्मेदार भी वही है, वो यज्ञ को संभाल भी रहा है और साक्षी दृष्टा होकर देख भी रहा है कि जिनके हाथों में उसने यज्ञ सौंपा है वो उसे कैसे संभाल रहे हैं। दोनों काम कर रहा है, वो शक्तियां भी दे रहा है, साथ में साक्षी होकर ये भी देख रहा है इन शक्तियों का सदुपयोग मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं। दोनों चीजें वो कर रहा है और देख रहा है। तो हम सभी अपने चित्त को शांत करने के लिए ये धारणा बहुत पक्की कर दें कि सब कुछ बाबा के हाथ में है, निश्चिंत हो जाएं। जिस यज्ञ का मालिक भगवान हो, जिस यज्ञ का संचालक और स्थापक स्वयं भगवान हो, उस यज्ञ का तो कुछ बिगड़ नहीं सकता। अपने जीवन के लिए भी हम सोच लें, हमने अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दिया है, जिसके हाथों में कुछ भी जाने के बाद अकल्याण नहीं होता। भक्ति में हम सब गाते रहे, जीवन नैया तुम्हारे हवाले, की तो नहीं थी अब हमने कर दी है। सच्चे दिल से अपना सब कुछ बाबा के हवाले हम कर दें और फिर देखेंगे बाबा हमारे जीवन को वहीं ले जाएगा जहां जाना चाहिए। मानवीय शक्तियां, दुनिया में बहुतों को कष्ट होता है, ज्ञान में चलने से आपको कोई रोकता है, कोई विरोध करता है, बिल्कुल आपके सामने बैरियर खड़े कर देते हैं, लेकिन भगवान साथ दे रहा हो तो ये सब ठहरेगा। वो आप ही रास्ता साफ कर देता है, इसलिए कभी भी हम उसकी शक्तियों में अपने विश्वास को डगमगाए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम देखते रहते हैं, मैं भी साक्षी होकर देखता हूँ, बाबा के बहुत सारे बच्चों में बाबा के प्रति अविश्वास। ये नहीं कि निश्चय नहीं है, बाबा है, ये पक्का निश्चय, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। हमने उसे बहुत याद किया है, हमने बाबा के लिए सेंटर बना के दिया, बाबा को सेंटर बना के दिया, वो रहेगा उसमें आके, क्या प्रोग्राम उसका, बहुत हमने बाबा के लिए ये किया, बाबा मदद नहीं करता। मैं आ गया ना, यही हमने मदद का द्वार बंद कर दिया। मैं का तो दरवाजा है ना मैंपन, जो ईश्वरीय मदद के द्वार को बंद कर देता है। जब तक हमारे पास ये द्वार बंद है तो ऊपर से आएगा कैसे माल, इसलिए इस द्वार को हम खोले रखें। मैं सोचा करता हूं कभी कभी, मैं बाहर जब क्लास भट्टियां कराता हूं, कभी कभी मैं अपनी भट्टी तैयारी से नहीं कराता कि मैंने फिक्स कर लिया हो कि ये क्लास करानी है, मैं तो ऐसे ही जाता हूं। और अनेक बार तो ऐसा होता है कि मुझे क्या शुरू करना है क्लास में, मुझे वो भी पता नहीं रहता, बाबा का आह्वान कर लेता हूं और बहुत अच्छा होता है। तो कहीं कहीं मैं लोगों को एक बात सुनाया करता हूं, जहां बहनें थोड़ा कह देती हैं कि यहाँ ये है, थोड़ा इस पे भी दृष्टि डलवा देना लोगों की। शंकराचार्य एक छोटा सा सन्यासी था, आप लोगों में से बहुतों को तो नहीं पता होगा, 7 साल की आयु में शंकराचार्य ने सन्यास लिया था। 1-2 साल बाद की बात होगी, छोटा सा सन्यासी, कद भी उसका छोटा ही था, भिक्षा मांगने के लिए गया था, एक माता की झोंपड़ी में गया, अलख जगाई, माता बाहर आई आंखों में आंसू लेकर कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आंखों में आंसू इसलिए थे कि एक सन्यासी द्वार से यदि खाली जाता है तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। वो रोने लगी, कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। शंकराचार्य को बड़ी दया आई और कहा जाके देखो अंदर कुछ है होगा। तो एक आंवला उठा लाई कि मेरे घर में तो एक आंवला है बस। शंकराचार्य ने दोनों हाथ फैलाकर आंवला स्वीकार किया और उसके आंगन में बैठकर ध्यान स्थित हुआ, अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और उसके आंगन में सोने के आंवलों की बरसात हो गई। कई लोग सोच सकते हैं ये काल्पनिक घटनाएं हैं, परंतु नहीं, ये संभव भी है। मैं सोचता हूं कि एक मनुष्य सिद्ध पुरुष सोने के आंवलों की बरसात करा सकता है तो भगवान। लोग अहंकार रखते हैं, बाबा को मैंने इतना दिया बाबा भी हंसता होगा ना कि मुझे कागज दे रहे हैं, और अहंकार भी रख रहे हैं कि हमने भगवान को कागज दिए। सत्य तो ये है, जब बाबा इस संसार से जाएगा तो संसार में हीरे सोने रत्नों की बरसात करा कर जाएगा ना। हम सब ने सुना है कि धरती पर ये सब बिखरे पड़े होंगे पत्थरों की तरह, तुम इनसे मकान बनाओगे, कहते हैं ना बाबा। तो ऐसा बाबा हमें साथ दे रहा है, जिसकी चुटकी बजाते ही यहाँ बरसात हो सकती है सोने की, जो इस धरा को स्वर्ण से, हीरों से, रत्नों से भर के जाता है। देखो उसका अपने बच्चों से कितना प्यार है, भरपूर करके जाता है। तो ऐसे में हमारे मैंपन का कहाँ स्थान रह गया। इसको ही बाबा कहते हैं निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, मैंपन से रहित होकर सेवा करो। तो अगर हम इसको अपना लक्ष्य बना लें, मैंपन का त्याग, सेवा भी की भूल गए, हमने कुछ नहीं किया, ये बार बार अनुभव होता है, आप सबको भी होता होगा, नहीं होता तो कर लें, बाबा ही सब कुछ कर रहा है, रिमोट कंट्रोल उसके ही हाथ में है हमारा। इसलिए हम अपनी सभी समस्याएं, अपने मन के सभी बोझ उसके हवाले कर दें और फिर देखें जीवन कितना आनंदित होता है, जीवन कितना सुखों से भर जाता है, इस पर हम सभी ध्यान देंगे। तो मैंपन के त्याग को संगम युग पर अपना लक्ष्य बना लें और बहुत अच्छी तरह चिंतन कर लें, आप सब करते भी हैं और कर लें, हम पूरे अगले कल्प के लिए भाग्य निर्माण कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा अगर सोच लें कि जो पिछले कल्प में हमने भाग्य बनाया था वो 84 जन्मों में खाया, यूज किया, खत्म हुआ, पुनः भाग्य निर्माण कर रहे हैं अगले कल्प के लिए, तो हमारे हाथ में शक्ति है, चाबी है, भाग्य की रेखा खींचने की कलम है, हम अपने भाग्य का निर्माण करें। मैं अब एक बहुत सुंदर बात पर आपके सामने कुछ बातें रख देता हूं जिसको आप आज से ही अपने जीवन में अपना लेंगे, बहुत अच्छी बात है वो। मैं दूसरे ढंग से कहूंगा, बाबा की बताई हुई सब बातें हैं लेकिन हम बाबा की बातों को थोड़ा हल्का ले लेते हैं ना। बहुत साल पहले मैंने बाबा की मुरली में एक लाइन सुनी थी जिस पर मैंने बहुत कार्य किया अपने जीवन में, संकल्प की शक्ति ही भाग्य की एनर्जी है। मुझे याद नहीं वो कौन सा साल था, नहीं तो मैं फिर उसे ढूंढता, मुझे बिल्कुल याद नहीं, पर यह बात मेरे अंतर्मन में छप गई थी। संकल्प के द्वारा हम भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल में आज से कर लें। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो संकल्प हम करते हैं, बहुत ध्यान देंगे आप इस पर, जो संकल्प हम करते हैं, निरंतर करते हैं ना, कुछ विचारधाराएं बहुत मजबूती से हमारे अंदर समा गई हैं, उनकी तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती रहती हैं। ये तो बात सब जानते ही हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति उन संकल्पों के अनुसार ही हमें सब कुछ वापिस प्रदान कर रहा है। इसलिए अपने वर्तमान जीवन के भाग्य के जिम्मेदार भी हमारे संकल्प ही हैं। बहुत सूक्ष्म थ्योरी, संसार के प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी ये बात, उसकी बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है, आप में से जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो, क्वांटम थ्योरी, संकल्पों का प्रभाव, ये सारा खेल संकल्पों से संचालित हो रहा है। विकारों के संकल्पों ने दुर्गति कर दी, पवित्रता के संकल्प, शुभ भावनाओं के संकल्प, शक्तिशाली संकल्प पुनः निर्माण कर रहे हैं सतयुग का। तो आप सब ध्यान दें, जो कुछ हम सोच रहे हैं उसका कई गुना रिटर्न वापिस हमारे पास आ रहा है। इसलिए एक बात अपने जीवन में गांठ बांध ले आज से, जो मनुष्य जो लिख रहे हैं वो लिख लें, जो मनुष्य खुशी और प्रेम की तरंगें इस ब्रह्मांड में भेजता है, जो मनुष्य खुशी और प्रेम की तरंगें इस ब्रह्मांड में भेजता है, ये ब्रह्मांड उसे मन चाही प्राप्तियां करा देता है, वापिस आएगा सब कुछ। है, छोटी सी बात ध्यान रहेगी ना, जो कुछ हम दे रहे हैं वो कई गुना होके वापिस आ रहा है। सहज भाषा, हमारा हर संकल्प प्रकृति से मिल रहा है और निर्माण कर रहा है। एक बहुत गहरी बात आपके सामने रख दो, कभी कभी मैं सोचता हूं, मेरी डॉक्टरों से बात होती है कि शरीर की रचना कितनी गुह्य है, आप कभी सोचते हो कितनी वंडरफुल फैक्ट्री है हर एक का शरीर, खून बन रहा है। मैं पूछा करता हूं, कोई वैज्ञानिक या इंजीनियर ऐसी फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें दूध बनता हो और खून बनता हो? बना सकता है दुनिया में? सारे संसार के वैज्ञानिक जोड़ लगा लें, इंजीनियर्स जोड़ लगा लें, किसने बनाई? तो हम लोग चिंतन किया करते हैं, हंसी का चिंतन है कि जरूर बाबा ने कभी बैठ के डिजाइन किया होगा, कुछ तो किया है। ये तो बात हम उनको कह देते हैं जो और कुछ नहीं जानते, पर सत्य बात ये है कि गर्भ में आत्मा के यानी मन के वाइब्रेशंस के आधार से शरीर की रचना होती है। किसी को बनाने की जरूरत ही नहीं, जो कुछ शरीर में है वो संकल्पों के वाइब्रेशंस में होता है। बड़ी सूक्ष्म रचना है शरीर की। देखो, हार्ट से खून पंप हो रहा है, श्वास से उसको गति मिल रही है, उससे शरीर चल रहा है, गंदगी बाहर निकल रही है, अच्छाइयां रस और कितनी शक्तियां शरीर में बन रही हैं, कितनी सुंदर फैक्ट्री है। अंदर ही रिपेयरिंग का भी प्रबंध है, आप वंडरफुल देखेंगे, बात देखेंगे, शरीर में अंदर ही रिपेयरिंग का भी प्रबंध है। अब तो साइंस मेडिकल डॉक्टर वो काम कर रहे हैं, पर इस शरीर में भी वो सिस्टम है। तो ध्यान दें, जो कुछ हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे संकल्प। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया, मैं तो बहुत बीमार हूं, अब तो ठीक नहीं होंगी, तो क्या होगा? वो कभी ठीक नहीं होगी। कोई मनुष्य यदि बार बार सोचता है मेरा तो योग ही नहीं लगता, लगता है संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो रही है ये सोचना। इसलिए सभी ध्यान दें, जो कुछ इस जीवन में हम प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ही संकल्प क्रिएट करें। हमारे जीवन में कोई समस्या है, देखिए हर एक के जीवन में कोई समस्या होती है, अपनी भी, परिवार की भी हो सकती है, काम धंधों की भी हो सकती है। उस समस्या के बारे में जो कुछ हम सोच रहे हैं उसी पर आधारित हो रहा है समस्या खत्म होगी या हल हो जाएगी। इसलिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर संकल्प दे दिए, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इन समस्याओं से ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम विघ्न विनाशक हो, समस्याएं आई हैं तुम्हारे पास शक्ति है, तुम इन विघ्नों को नष्ट कर सकते हो। कितना सुंदर संकल्प बाबा ने हमें दिए हैं। मनुष्य क्या सोचने लगता है, अरे मेरा क्या जीवन है, भगवान तो मिल गया पर समस्याएं एक के बाद एक आती जा रही हैं, जीवन नष्ट हो गया अपना तो, पहले ही अच्छे थे, गुरु के पास तो चले जाते थे, गुरु कह देता था अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं, माताएं पूछती हैं, यार गुरु ही अच्छा था हमारा, तो बाबा ने ज्ञान तो दिया, बाकी सब तो अच्छा है, पर कम से कम गुरु कुछ कर तो देता था, बाबा नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं कि बाबा क्या करता है। संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे सभी, अपने जीवन को महान, सुखी, निर्बंधन, समस्या मुक्त, तनाव मुक्त बनाने के लिए करें सभी। इस ब्रह्मांड में खुशी और प्रेम की तरंगे भेजें। ये बिल्कुल सत्य है जो बाबा ने पिछली बार हमें कहा, सबको उनके मूल स्वरूप में देखो, याद है ना, बाबा ने कहा था चाट लेंगे। क्योंकि जब हम सबको मूल स्वरूप में देखेंगे तो हमारे चित्त में सभी के लिए प्यार और सम्मान की भावना हो जाएगी। मैं यहां बैठकर आप सबको देखूं कि सब देव कुल की महान आत्माएं बैठी हैं, थोड़ी देर के लिए ये शरीर आपका लोप हुआ और देव स्वरूप में सब प्रकट हो जाए, तो मेरे मन में आप सबके लिए कितना प्रेम और सम्मान हो जाएगा। महान आत्माओं की सभा, 100 महान आत्माएं इस सभा में बैठी हैं, 100 देवी देवता बैठे हैं हमारे हॉल में, कैसी गुड फीलिंग हो जाएगी। ये तरंगे इस ब्रह्मांड में फैलेंगी और रिटर्न होगा बहुत सुंदर हमें। इसलिए खुशी, छोटी बातों में खुशी नष्ट न हो, खुशी हमारी अपनी संपत्ति है, बातें तो आएंगी और जाएंगी। किसी ने आपको कटु वचन बोल दिया, वो वचन भी इस वायुमंडल में फैलकर नष्ट हो गए, हमारे ब्रेन में वो चले न जाएं कि हम सोचते ही रहें इसने मुझे ये कहा। खुशी पर मुख्य ध्यान दें, खुशी और प्रेम, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा जीवन में। मैं एक बहुत अच्छी बात मुझे अपने ही एक ज्योतिषी ने बताई, हमारे यहाँ ज्योतिषी आते हैं ना, बहुत ज्ञान में है आजकल, तो एक भोपाल के आते हैं, यहाँ भी सेवा में भी आते रहते हैं कभी कभी, कहा देखो हमारे ज्योतिष में एक बहुत सूक्ष्म बात कही गई है जो सब ज्योतिषियों को नहीं पता, लक्ष्मी रोज हरेक के द्वार पर आती है, पर अगर देखती है कि अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति है, वापिस अशांति में लक्ष्मी क्यों जाएगी, और अगर देखती अंदर बहुत खुशहाली है तो प्रवेश कर लेती है। बहुत कितने बड़े सिद्धांत लिख दिए हैं लिखने वालों ने, खुशी और प्रेम, इसको हम अपने जीवन का अविनाशी अंग बना लें। इसलिए बाबा ने बहुत ध्यान दिलाया शुभ भावनाओं पर भी, क्योंकि हमारी शुभ भावनाएं जग का कल्याण करती हैं। हम छोटी साधारण आत्माएं तो नहीं है ना, वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम पूर्वज हैं, हम साधारण नहीं, पूर्वज, जिनकी पालना, जिनको पालना करनी है संसार की। तो सभी अपने उस कर्तव्य को भी नहीं भूलेंगे कि जिधर बाढ़ आई हुई है, बहुत ज्यादा आई हुई है, बाबा ने कह ही दिया था जल और अग्नि दोनों ज्यादा विनाश करेंगे, तीसरे होंगे भूकंप, भूकंप तो सफाई करेंगे, ऊपर का माल नीचे, धरती जो अन्न नहीं दे रही है, अब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ना लौकी को, टमाटरों को, हंस रहा था एक भाई के बैंगनों को भी लगाए जाने लगेंगे, बैंगन भी इतने लंबे लंबे हो जाएंगे, कैसे धरती फिर से उपजाऊ होगी, अरे खून की खाद मिलेगी इसको, इसलिए भारत में खून ज्यादा मिलेगा धरती को, बाकी का तो एटम बम से खून क्या, हड्डी भी हवा बन के उड़ जाएगी, संस्कार करने की जरूरत नहीं, लेकिन भारत की धरती फिर से देवताओं के योग्य हो जाएगी ना, इसलिए उथल पुथल भी बहुत होगी, लेकिन खून की खाद भी इसे मिलेगी। लोग अगर सुने तो हैरान होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इनका दिमाग तो ठीक है, पर सत्यता तो यही है। तो हम सभी सकास देंगे, सभी भाई बहने संकल्प कर लें कि जब हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, देखो कितनी बार बजते हैं सारे दिन में, एक एक मिनट वाला भी, तीन तीन मिनट वाला भी, हम उन लोगों को सकास दें जहां महाविनाश हो रहा है, हम इसको छोटा विनाश न समझ लें, बहुत भयानक विनाश जल कर रहा है। मेरे को जहां तहां से फोन आए, क्योंकि हमारा लौकिक एरिया भी वही है, लोग कह रहे थे ऐसी बरसात हमने जिंदगी में नहीं देखी, ऐसी मूसलाधार बरसात, 10-20 मिनट चल के बंद हो जाती थी लेकिन लगातार चल रही है, सड़कें बह गई हैं, गड्ढे हो गए, जैसे अर्थक्वेक में गड्ढे हो जाते हैं ना, इसलिए दिल्ली से हरिद्वार का मार्ग, दिल्ली से चंडीगढ़ का मार्ग बंद हो गए, यहाँ पे जो जहां थे वहीं रह गए हैं, गाड़ियां वहीं पड़ी हैं। तो इसको हम छोटी चीज न समझे, जिस व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़े परिवार सहित, आप सोचो हम लोग एक अपनी खाट छोड़ने को तैयार नहीं है, और घर छोड़ना पड़ता हो, सब कुछ वहीं छोड़ के भाग लो, जिंदे बचेंगे तो घर फिर मिल जाएगा, ऐसे दुखी अशांत जिनको ठिकाना नहीं, उन आत्माओं को हम बहुत अच्छी सकास देंगे। कैसे देंगे, आप संकल्प करेंगे मैं फरिश्ता अमेरिका के ऊपर हूं, अपने को देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस मैं अमेरिका के ऊपर हूं आकाश में, बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे फैल रही हैं, फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर हूं, फिर मैं चीन के ऊपर हूं, फिर मैं जर्मन के ऊपर हूं, फिर भारत में जहां बाढ़ आई है वहां ऊपर हूं। ये प्रैक्टिस हम बढ़ा के चलें तो आगे चलकर क्या होगा कि हमारा वो फरिश्ता स्वरूप लोगों को दिखाई देगा और वो महसूस करेंगे हमारे इष्ट देव देवियां हमें मदद करने के लिए आ गए, अब डरने की बात नहीं। उनका भय समाप्त हो जाएगा, उनकी चिंताएं उनकी अशांति लोप हो जाएगी। लेकिन होगा तब जब लंबा काल हम ये अभ्यास करते रहेंगे। पसंद है? सभी ट्रैफिक कंट्रोल के समय सवेरे करेंगे, 10 मिनट सवेरे लगा दें, शाम को भी यहां योग करें, एकांत में करें, घूम के करें, जैसे हम वहां हैं और सकाश दे रहे हैं, तो सकाश देने से सबसे ज्यादा पुण्य जमा होता है। बाबा बहुत अच्छी बात कह आए हैं उसी आखिरी मुरली में पिछले सीजन में, अगर तुम सकाश देने की सेवा में बिजी हो जाओ तो तुम्हारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। किसी के जीवन में, परिवार में, संबंधों में विघ्न आए हुए हों, सकाश देने लगो, इस तरह। दूसरा तरीका है, अपने सामने विश्व का गोला ले आओ, ग्लोब, और इधर अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पूर्वज। मस्तक से, आंखों से शक्तियों की किरणें निकल कर ग्लोब पर पड़ रही हैं। एक एक मिनट कर लेंगे, बहुत सुख अपने को मिलेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी और हमारी श्रेष्ठ स्थिति से विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया है, आप सभी चिंतन करेंगे, संगम युग पर फाइनल कर दें, मुझे ये नहीं करना है, केवल ये करना है। संगम युग केवल ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करने के लिए है, बाकी काम तो चारों युगों में होते ही रहेंगे। सतयुग में खाए पिएंगे बहुत अच्छा, सोने के लिए महल सोने के होंगे, जगह की कोई कमी नहीं होगी, बाबा ने हम सबको ऐसा मालिक बना दिया, कितनी भी जगह में हम अपना मकान बनाएंगे, किसी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, पर नापना नहीं पड़ेगा कि एक फुट पे लड़ाई हो रही, भाइयों की मारकाट हो रही है, सारी धरती अपनी। ऐसा सुंदर स्वराज हमें मिलने जा रहा है तो पावरफुल लक्स बना लें, ये जीवन केवल तुम्हारे लिए, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, मेरा हर संकल्प तुम्हारे लिए। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसकी प्रैक्टिस करें, मेरा हर संकल्प तुम्हारे लिए, बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। तो केवल ईश्वरीय खजाना प्राप्त करना है, ये लक्ष्य बना लें, बाकी चारों ओर से आंखें बंद, काम यही आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ओम शांति।